अरुणिमा का मन बुरी तरह घबरा रहा था। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फ्लाइट की खिड़की के बाहर डरी हुई नजरों से देखा। जब से उसे अपने पिता के एक्सीडेंट का पता चला था, उसका मन बेहद बेचैन था और वो उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहती थी। वो इस वक्त आस्तिक के निजी विमान में बैठी थी। आस्तिक का ये प्राइवेट प्लेन था जिस पर वो बिजनेस के लिए विदेशी यात्राएं किया करता था। लेकिन जब अरुणिमा ने आस्तिक को देखा तो पाया कि वो दूसरी तरफ की सीट पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। उसके चेहरे पर न तो कोई फिक्र थी और न ही कोई शिकन। यहां आने से पहले ही आस्तिक ने अरुणिमा से कह दिया था कि उसे कोई परवाह नहीं है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ और क्या नहीं। वो तो बस इसलिए जा रहा था क्योंकि पुष्कर रायचंद ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अरुणिमा का चेहरा उदासी से भर गया था क्योंकि आस्तिक की नज़रों में उसके परिवार की कोई अहमियत नहीं थी। वो उसके साथ सिर्फ अपने पिता के कहने पर जा रहा था, ना कि अपनी मर्जी से। दूसरी तरफ अरुणिमा का मन अपने पिता की हालत को लेकर बेचैन था। शादी के रिसेप्शन के बाद उसने अपने पिता को देखा तक नहीं था। फ्लाइट में बैठते ही उसने अपनी माँ को फ़ोन करने का विचार किया, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसकी माँ ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। अरुणिमा बहुत तनाव में आ गई थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पिछले एक साल से उसके माता पिता ने उससे बात तक नहीं की थी? ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए हों। और अब अचानक उसके पिता का एक्सीडेंट, ये खबर उसे और ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसके पिता बहुत अच्छे ड्राइवर थे। वे कभी भी इतनी लापरवाही से गाड़ी नहीं चला सकते थे कि उनका एक्सीडेंट हो जाए। ये सोच सोचकर वो बेचैन हो रही थी। वो जल्द से जल्द अपने पिता को देखना चाहती थी। बेंगलुरु पहुंचने में अभी भी समय था। अरुणिमा अपनी सीट पर बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। उसे हवाओं में तैरते बादलों के अलावा और कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। तभी एक एयर होस्टेस उसके पास कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई, लेकिन अरुणिमा ने उसे मना कर दिया। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, आस्तिक ने कहा, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी लैपटॉप पर टिकी हुई थीं और उंगलियां लैपटॉप पर ही चल रही थीं। अरुणिमा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है और मेरा मन भी नहीं है कुछ खाने का। आस्तिक की उंगलियां अचानक से रुक गईं। उसने एक नज़र उठाकर अरुणिमा को देखा। उसकी तीखी नज़रों से हारकर अरुणिमा चुपचाप अपनी सीट पर टिक कर बैठ गई। आस्तिक धीरे से झुकते हुए उसके कानों के पास फुसफुसाया, मेरी बात मानो तो खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं देख चुका हूँ तुम बेड पर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरुणिमा की आंखें शर्मिंदगी और गुस्से से दूसरी तरफ मुड़ गईं। वो काश अपनी आंखें बंद कर लेती और अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच लेती। ये इंसान सच में इम्पॉसिबल है। इतनी टेंशन वाली सिचुएशन में भी ये इस तरह की घटिया बात कैसे सोच सकता है? आस्तिक के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। उसने एयर होस्टेस को ऑर्डर देते हुए कहा, ऑरेंज जूस। एयर होस्टेस ने आस्तिक की ट्रे पर ऑरेंज जूस का ग्लास रख दिया। आस्तिक ने ग्लास उठाया और धीरे से अरुणिमा की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये ऑफर नहीं है, ऑर्डर है। मेरा कुछ भी पीने का मन नहीं है, अरुणिमा ने रिक्वेस्ट भरी नज़रों से आस्तिक से कहा। लेकिन आस्तिक ने ज़बरदस्ती उसके होठों पर ग्लास लगाते हुए कहा, तुम्हारे पिता बस घायल हुए हैं, मरे नहीं हैं, कम से कम अभी तक तो मरे नहीं हैं। अरुणिमा के होठों पर ग्लास लगा हुआ था, लेकिन वो ऑरेंज जूस नहीं पी रही थी। उल्टा उसने बड़ी बड़ी आंखों से आस्तिक को घूरा। आस्तिक उसे ऐसे देखने से और ज़्यादा गहरे तरीके से मुस्कुराने लगा। वो धीरे से अरुणिमा के पास आया, लेकिन उसने ग्लास नहीं हटाया। फिर वो उसके कानों के पास झुका और वहां पर हल्के से अपनी जीभ फिराने लगा। अरुणिमा के पूरे शरीर के रोएं खड़े हो गए थे। इस इंसान के अंदर इतनी हवस है कि ये सामने वाले की फीलिंग्स की भी कद्र नहीं करता। अरुणिमा इस वक्त अपने पिता की टेंशन में पागल हुई जा रही है और इस इंसान को सिर्फ अपनी ही पड़ी है। वो अरुणिमा की गर्दन पर अपने गीले होंठ चलाते हुए धीरे से कहा, जान, तुम्हें हेल्दी रहना ज़रूरी है। अगर तुम हेल्दी नहीं रहोगी तो मुझे बर्दाश्त कैसे करोगी? और अगर मुझे बर्दाश्त नहीं करोगी तो मेरी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया कैसे बनोगी? फिर वो एक पल के लिए रुका और घातक अंदाज में बोला, इससे पहले कि मैं अभी फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर डालकर तुम्हारे कपड़े उतारना शुरू कर दूं, चुपचाप से जूस ख़त्म कर लो, वरना उसके बाद जो करने पर आया तो तुम्हें न जूस ख़त्म करने लायक रखूंगा और न ही सांस लेने लायक। आस्तिक का दूसरा हाथ अरुणिमा की ड्रेस के अंदर जा चुका था और वो उसकी कमर को धीरे धीरे सहलाने लगा। अरुणिमा डर से कांपने लगी। इस सनकी का कोई भरोसा नहीं। उसने चुपचाप अपना मुंह खोला और जूस पीने लगी। जब तक जूस खत्म नहीं हुआ, ना तो आस्तिक के हाथ रुके और न ही उसके होंठ। उसकी इन हरकतों से अरुणिमा और ज्यादा सहर रही थी। उसे तो जूस भी ढंग से पिया नहीं जा रहा था। बस वही जानती थी कि कितनी मुश्किल से उसने अपनी सांसें स्थिर रखते हुए जूस खत्म किया था। जैसे ही जूस खत्म हुआ, आस्तिक ने ग्लास हटाया और फिर खुद भी पीछे हो गया। अरुणिमा का डर से लाल चेहरा देखकर आस्तिक को बहुत मजा आ रहा था। उसने जूस का ग्लास साइड में रखा और अरुणिमा के होठों पर एक टिश्यू पेपर रखकर उसे पोंछते हुए कहा, गुड गर्ल, अगर ऐसे ही मेरी बात मानती रहोगी तो आगे भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, वरना अभी तक तुमने जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो मैंने दिखाई ही नहीं है। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक को देख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। अरुणिमा ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, वो और आस्तिक के इस भयानक रूप का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुई कि उनकी फ्लाइट बेंगलुरु पहुंच गई है। आस्तिक अरुणिमा को लेकर फ्लाइट से नीचे उतरा, लेकिन बेंगलुरु की जमीन पर पैर रखते ही अरुणिमा का दिल एक अजीब से एहसास से भर गया। पूरे एक साल बाद वो वापस बेंगलुरु आई थी, उसका शहर जहां उसका बचपन गुजरा था, जहां उसने पढ़ाई की थी, जहां उसके दोस्त थे, उसका परिवार था और देव। अरुणिमा ने गहरी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। एक साल बाद मैं फिर यहां हूं, उसकी सारी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए बेताब थी, उनके गले लगना चाहती थी, उनसे हजारों सवाल पूछना चाहती थी। उन्होंने पूरे एक साल तक मुझसे बात क्यों नहीं की? आस्तिक अरुणिमा को एक प्राइवेट होटल में ले गया। वैसे तो बेंगलुरु में उसका खुद का घर भी था, लेकिन आस्तिक वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे अपने 5-स्टार होटल के प्राइवेट सुइट में रख रहा था। अरुणिमा हॉल में थी और आस्तिक इस समय बेडरूम में था। उसने फ्रेश होने का सोचा। वो बहुत खुश थी कि आखिर वो अपने माता पिता से मिलेगी, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता की फिक्र भी सता रही थी। वो बाथरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी कमरे से कुछ टूटने की जोरदार आवाज और किसी के चिल्लाने की आवाज आई। होटल स्टाफ पहले से ही वहां मौजूद था। अरुणिमा डर गई और कमरे की तरफ देखने लगी। तभी उसने देखा कि वहां से एक वेट्रेस और दो मेल वेटर बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरों पर इस कदर डर था कि वे कांप रहे थे। वेट्रेस जल्दी से वाइन की बोतल उठाती है और उसे लेकर दोबारा कमरे के अंदर चली जाती है। अरुणिमा बुरी तरह से डर गई थी। आस्तिक होटल में आते ही इतना नाराज क्यों हो गया? ऊपर से होटल स्टाफ इतना सहमा हुआ था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके कमरे में जाने की, लेकिन फिर भी वे लोग वाइन देने के लिए अंदर गए। और तभी अंदर से फिर से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। कुछ ही सेकंड बाद होटल स्टाफ बाहर निकला। एक वेटर थोड़ा झुकते हुए बोला, मैम, सर आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं।
उनके चेहरों पर अभी भी डर था और उनकी आवाज कांप रही थी। उनकी बात सुनकर अरुणिमा का गला सूख गया। पता नहीं आस्तिक इतना गुस्से में क्यों है, लेकिन उसने बुलाया है, इसका मतलब जाना तो पड़ेगा ही। अरुणिमा ने हल्का सा सिर हिलाया और स्टाफ को बाहर जाने के लिए कहा। होटल स्टाफ कमरे से बाहर चला गया और अब वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बेडरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन जितने उसके कदम आगे बढ़ रहे थे उतनी ही उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। मैं आस्तिक के गुस्से का सामना नहीं करना चाहती, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये उसके गुस्से को और भड़काने का एक और कारण बन जाएगा। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे हल्का सा धक्का दिया। धीरे धीरे दरवाजा खुलता गया और वो डरते हुए अंदर दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, एक तेज आवाज ने उसे अपनी जगह पर ही रोक दिया। उसकी आंखें पूरी तरह से डर से भर गई थीं और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजे का हैंडल भी छोड़ सके। वो पूरी तरह से जड़ हो चुकी थी। उसने जबरदस्ती खुद को कंट्रोल किया और एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके मुंह से तेज चीख निकल गई। दर्द से तड़पते हुए उसने नीचे देखा। एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में गड़ गया था और खून बहने लगा था। वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी कमरे की हालत देखकर उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। जब वो कमरे से बाहर निकली थी तब सब कुछ ठीक था। कमरा सजा समरा और साफ सुथरा था, लेकिन अब आस्तिक ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। पूरे फर्श पर सामान बिखरा हुआ था, कमरा अस्त व्यस्त था, सफ़ेद चादरें फटी हुई थीं और उसकी नज़र टूटे हुए लैपटॉप पर गई। वो दो टुकड़ों में बटा पड़ा था, लेकिन उसकी नज़र सबसे आखिर में जिस चीज़ पर पड़ी वो था सोफे पर बैठे आस्तिक। आस्तिक जिसने अपने हाथों में शराब की बोतल थामी हुई थी और लगातार पी रहा था। अरुणिमा हैरान रह गई, आखिर इसे अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? जब वो यहाँ आया था तब वो बिल्कुल ठीक ठाक था। हाँ, उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन वो इतना गुस्से में भी नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये इस हद तक पागल हो गया? तभी वहां खड़ी होकर क्या इनविटेशन का इंतजार कर रही हो? यहाँ आओ! आस्तिक की तेज आवाज ने अरुणिमा को जैसे झटका दे दिया। उसने बुरी तरह से चिल्लाते हुए उसे अपने पास बुलाया। अरुणिमा का पूरा शरीर कांप गया। उसका पैर घायल था और आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे आस्तिक के पास जाना ही था। क्या मैं आस्तिक के इस गुस्से की वजह हूँ? उसके रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसका खून जैसे जम गया था। वो डरते हुए धीमे धीमे कदमों से आस्तिक के पास पहुंच रही थी। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन आस्तिक की नज़रें सिर्फ उसके चेहरे पर टिकी थीं। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, आस्तिक ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर गिरा दिया। अरुणिमा सोफे पर गिर गई। उसका आधा शरीर सोफे पर था और आधा नीचे लटक रहा था, लेकिन आस्तिक गुस्से में उसके ऊपर झुकते हुए गुर्राया, तुम जैसी औरत सिर्फ इसी लायक है। अरुणिमा डर गई। वो इस वक्त आस्तिक से कुछ नहीं चाहती थी। सच कहूँ तो मैं आस्तिक को भी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी डरते हुए वो आस्तिक से बोली, क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। पर आस्तिक के चेहरे पर जो डेविल स्माइल थी वो और गहरी हो गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें अपनी असली औकात समझ आ जाए। अरुणिमा को समझ ही नहीं आया कि आस्तिक क्या बोल रहा है। तभी उसने अपने फ़ोन पर एक न्यूज़ वीडियो प्ले की। स्क्रीन पर एक कपल की प्रेगनेंसी की खबर चल रही थी। अरुणिमा थोड़ी हैरान हुई। ये मुझे क्यों दिखा रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका आस्तिक से क्या लेना देना है, और ये मुझे इस कपल की वीडियो क्यों दिखा रहा है? वो एकदम हैरान हो गई और गुस्से में आस्तिक को देखते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या, ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? आस्तिक नशे में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अरुणिमा के और करीब झुका और उसके कानों के पास खतरनाक तरीके से फुसफुसाया, अमायरा प्रेग्नेंट।